लूका बाब 10। उसके बाद खुदावंद यीशु ने मज़ीद 72 लोगों को चुनकर जिन शहरों में और मुख्तलिफ जगहों पर खुद जाना चाहते थे वहाँ पर कब्ल अज़ वक्त ही दो दो गिरोहों को भेज दिया। यीशु ने उनसे कहा,
फसल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके लिए काम करने वाले मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो ज्यादा मजदूरों को भेजे। तुम अब जा सकते हो लेकिन मेरी बातें सुनो, भेड़ियों के बीच बकरियों को भेजने की तरह तुमको भेज रहा हूँ। हाथ की थैली हो कि रोपिया हो या जूतियाँ हो, साथ न ले जाएं। और न रास्ते में रुक कर लोगों से बातें करो। तुम घरों में दाखिल होने से पहले कहो, इस घर में सलामती हो। अगर इस घर में कोई पर अमन तबीयत का आदमी हो तो तुम्हारी सलामती की दुआ उसे पहुँचेगी, और अगर वो शरीफ नफ्स न हो तो तुम्हारी सलामती की दुआएं तुम्हारी ही तरफ लौट कर आएंगी। घर में क्याम करो, वो तुम्हें जो भी खाने पीने की चीजें पेश करें तो तुम उसको खा लो और बचा लो। मजदूर अपनी तनख्वाह लेने का मुस्तहिक होगा, इसलिए क्याम के लिए तुम उस घर को छोड़कर कोई दूसरा घर कबूल न करो। जब तुम किसी गाँव में जाओ और गाँव वाले तुम्हारा इस्तकबाल करें, और अगर वो कोई खाना पेश करें तो तुम उसको खाओ, और वहाँ के बीमारों को तुम शिफा बख्शो, और वहाँ के लोगों को कहो कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे बहुत ही करीब आने वाली है। लेकिन जब तुम किसी गांव को जाओ और वहाँ के मकामी लोग तुम्हें खुश आमदीद न कहें तो तुम उस गांव की गलियों में जाकर कहो कि हमारे पैरों में तुम्हारे शहर की लगी धूल को तुम्हारे ही खिलाफ उसको झाड़ देते हैं। लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि खुदा की बादशाहत करीब आने वाली है। कहो, मैं तुमसे कहता हूँ, फैसले के दिन उन लोगों का हाल सदूम के लोगों के हाल से ज्यादा खराब और सख्त होगा। तुम पर अफसोस, ऐ खराजीन, तुम पर अफसोस। ऐ बैतसैदा, मैंने तुम्हारे बीच कई मोजज़े दिखाए, अगर वो मोजज़े सूर और सैदा जैसे मकामात पर हुए होते तो वहाँ के मकामी लोग बहुत पहले ही अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाते और अपने गुनाहों पर तोबा करते और टाट ओढ़ लेते और राख लेप लेते थे। लेकिन फैसला के दिन तेरी हालत सूर और सैदा के लोगों की हालत से भी खराब होगी। ऐ कफरनहूम, क्या तुझे इतनी फजीलत होगी और इतना बुलंद होगा जैसा कि आसमान? नहीं, बल्कि तू आलम अरवाह में उतारा जाएगा।
और कहा,
जो कोई तुम्हारी बातें सुनता है वो मेरी बातों को सुनता है, जो तुम्हें नहीं मानता गोया वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता गोया वो खुदा को नहीं मानता जिसने मुझे भेजा है।
जब 72 शागिर्द अपने सफर से वापस लौटे तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने यीशु से कहा,
अरे खुदाबंद, जब हमने आपका नाम कहा तो बदरोहें भी हमारी फरमा बरदार हो गईं।
यीशु ने उनसे कहा,
शैतान को आसमान से बिजली की तरह नीचे गिरता हुआ मैंने देखा है। सुनो कि मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं पर चलने की ताकत दी है। दुश्मन की ताकत से बढ़कर मैंने तुमको ताकत दी है, और कोई चीज तुमको नुकसान न पहुँचा सकेगी।
और कहा,
हाँ, रूहें तुम्हारी इताअत गुजार होंगी। इस बात से खुश मत हो कि ये ताकत तुम्हें हासिल है, बल्कि खुश इसलिए हो कि तुम्हारे नाम आसमान में लिख दिए गए हैं।
तब यीशु ने रूहुल कुद्दूस के जरिए बहुत खुश होकर इस तरह दुआ की,
हे आसमान और जमीन के खुदावंद बाप, मैं तेरी तारीफ करता हूँ कि तूने आलिमों पर और अकलमंदों पर इन वाकयात को पोशीदा रखा, इसलिए मैं तेरी तारीफ करता हूँ। लेकिन तूने छोटे बच्चों की तरह रहने वाले लोगों पर इस वाकया को जाहिर किया है। हाँ ऐ बाप, वही तो तेरी मर्जी थी। मेरे बाप ने मुझे हर चीज दी है, बेटा कौन है किसी को मालूम नहीं है, और तन्हा सिर्फ बाप ही को ये मालूम है, और बाप कौन है सिर्फ बेटे को ही मालूम है, और उस शख्स को जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे।
जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ तन्हा थे तो वो पलटकर उनसे कहा,
तुम पर फजल हो कि अब वाकई होने वाली हालात को तुम देखते हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि नबियों और बादशाहों ने उन वाकयात को देखना चाहा जो तुम देख रहे हो, लेकिन वो कभी नहीं देखे, और जिन वाकयात को तुम सुन रहे हो वो भी सुनने की तमन्ना किए, लेकिन वो कभी नहीं सुन पाए।
तब एक शरीयत का मुअल्लिम यीशु को आजमाने के लिए उठ खड़ा हुआ और पूछा,
ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं?
यीशु ने उससे पूछा,
शरीयत में उसके मुताल्लिक क्या लिखा हुआ है और तुम वहां क्या पढ़ते हो?
उसने कहा,
ये इस तरह लिखा हुआ है कि आपको अपने खुदावन से पूरे दिल और जान से, पूरे रूह से और पूरी ताकत से और पूरे जहन के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, और फिर जिस तरह अपने आप से मोहब्बत करता है उसी तरह पड़ोसियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए।
यीशु ने उससे कहा,
तेरा जवाब बिल्कुल सही है, तू वैसा ही कर, तब कहीं तुझे हमेशा की जिंदगी नसीब होगी।
लेकिन आदमी ने बताना चाहा कि वो उसका सवाल पूछने में सीधा है, इसलिए वो यीशु से पूछा कि
मेरा पड़ोसी कौन है?
तब यीशु ने कहा,
एक आदमी यरूशलम से यरीहो के रास्ते में जा रहा था कि चंद डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसके कपड़े फाड़ डाले और उसको बहुत ज्यादा पीटा भी। उसकी यह हालत हुई कि वो नीम मुर्दा हो गया। वो डाकू उसको वहां छोड़ दिए और चले गए। ऐसा हुआ कि एक यहूदी काहिन उस राह से गुजर रहा था। वो काहिन उस आदमी को देखने के बावजूद उसकी किसी भी किस्म की मदद किए बगैर अपने सफर पर आगे रवाना हुआ। तब लावी उस राह से गुजरते हुए उसके करीब आया। वो भी उस जख्मी आदमी की कुछ बगैर मदद किए अपने सफर पर आगे बढ़ गया। फिर ऐसा हुआ कि एक सामरी जो उस रास्ते पर सफर करते हुए उस जगह पर आया, वो राह पर पड़े हुए जख्मी आदमी को देखते हुए बहुत दुखी हुआ। सामरी ने उसके करीब जाकर उसके जख्मों पर जैतून का तेल और मह लगाकर कपड़े से बांध दिया। वो सामरी चूंकि एक गधे पर सवारी करते हुए बजरिए सफर वहां पहुंचा था, उसने जख्मी आदमी को अपने गधे पर बिठाए हुए उसको एक सराय में ले गया और उसका इलाज किया। दूसरे दिन उस सामरी ने 2 चांदी के सिक्के लिए और उसको सराय वाले को देकर कहा कि उस जख्मी आदमी की देखभाल करना, अगर कुछ मजीद अखराजात हों तो फिर जब मैं दोबारा आऊंगा तो तुझको अदा करूंगा।
यीशु ने उसको पूछा कि
उन तीनों आदमियों में से किसने डाकू के हाथ में पड़े आदमी का पड़ोसी होना साबित किया है?
मुअल्लिम शरीयत ने जवाब दिया,
उसी आदमी ने जिसने उसकी मदद की।
तब यीशु ने कहा,
तब तू जाकर अपने पड़ोसियों से ऐसा ही कर।
यीशु और उनके शागिर्द सफर करते हुए एक गांव आए। मार्था नामी औरत ने यीशु को अपने घर में मदऊ किया। उसकी मरियम नामी एक बहन थी। मरियम यीशु के कदमों के करीब बैठकर उनकी तालीम को सुनती थी, लेकिन उसकी बहन मार्था मेहमानों की देखभाल में मसरूफ रहती थी। घर में बहुत सा काम काज होता था, जिसकी वजह से मार्था गजब आलूद होकर यीशु के पास आई और कहने लगी कि
ऐ खुदावन, मेरी बहन ने घर का सारा काम मुझ पर छोड़ दिया है, इसलिए मेरी मदद करने के लिए उससे कहो।
लेकिन खुदावन ने जवाब दिया,
मार्था मार्था, तो बहुत मसरूफ है और कई मामलात में फिक्रमंद है, सिर्फ एक चीज ही जरूरी है, और मरियम ने जो बेहतर है वो इंतखाब किया है और उससे वो कभी वापस न लिया जाएगा।